नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 7,559 पदों के सृजन को मंजूरी दी। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,000 से अधिक विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और मौसम विभाग ने कहा, चक्रवातीय प्रभाव से 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के दक्षिणी भागों में अच्छी बारिश की संभावना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय इस कार्यक्रम का विषय है सेमीकंडक्टर के भविष्य को आकार देना। सम्मेलन का उद्देश्य भारत की सेमीकंडक्टर रणनीति और नीति का प्रदर्शन करने के साथ ही भारत को सेमीकंडक्टर के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। एक रिपोर्ट।
सेमिकॉन इंडिया में विश्व भर की बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां भाग ले रही हैं। यह सम्मेलन वैश्विक नेताओं और सेमीकंडक्टर उद्योग के विशेषज्ञों को इस क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करने का एक मंच प्रदान करेगा। इस सम्मेलन में 250 से अधिक प्रदर्शक अपने अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है और यह सेमीकंडक्टर विनिर्माण तंत्र के विस्तार के लिए प्रतिबद्ध है। सेमीकंडक्टर का उपयोग संचार, रक्षा, वाहन निर्माण और कंप्यूटिंग उपकरणों सहित विभिन्न क्षेत्रों में होता है। सुपर्णा सेकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 15 तारीख को झारखंड के जमशेदपुर में महत्वाकांक्षी पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को 2,745 करोड़ रुपए की किस्त जारी करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस मौके पर सभी लक्षित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न राज्यों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ हुई बैठक में कार्यक्रम की तैयारी के लिए जरूरी निर्देश दिए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 7,559 पदों के सृजन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने बताया कि प्रदेश के 6,421 उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में एक एक सहायक नियुक्त किए जाएंगे।
शिक्षा विभाग 43 नंबर 43 एजेंडा, राज्य के जो नवस्थापित और उत्क्रमित माध्यमिक उच्च विद्यालय हैं उसमें 6,421 पदों का सृजन किया गया है। 46 नंबर एजेंडा है कारा एवं सुधार सेवाएं निरीक्षालय, जिसमें 10 कार्यालय प्रचारी का पद सृजित किया गया है।
श्री सिद्धार्थ ने कहा कि मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना को भी मंजूरी दी है। योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर लंबाई वाले पुलों का निर्माण अब ग्रामीण कार्य विभाग करेगा।
मुख्यमंत्री सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें विभिन्न बहुत सारे आवेदन माननीय मुख्यमंत्री के जनता के दरबार में मुख्यमंत्री में आवेदन प्राप्त होते थे। मिसिंग लिंक है, बाढ़ में भी बहुत सारे पुल क्षतिग्रस्त हो गए हैं, बहुत सारे जर्जर पुल भी हो गए हैं और विभिन्न टोलों में संपर्कता हेतु पुल की आवश्यकता है, तो इसके लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 100 मीटर तक की लंबाई जो है विभागीय स्तर पर विभाग ग्रामीण कार्य विभाग इसका निर्माण करेगा और 100 मीटर से ऊपर पुल निर्माण निगम जो है वह इसको निर्माण करेगा।
पर्यटकों की सुविधा के लिए पटना में 3 5-स्टार होटलों के निर्माण और संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई है। मंत्रिमंडल ने पर्यटन स्थलों के प्रचार प्रसार के लिए ब्रांडिंग और मार्केटिंग नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने प्रदेश के 4 स्टेट हाईवे के निर्माण के लिए 2100 करोड़ रुपए खर्च करने को स्वीकृति प्रदान की है। ये चारों हाईवे 2 लेन के 204 किलोमीटर लंबे होंगे। कैबिनेट की बैठक में कुल 46 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। राजस्व और भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह ने कहा है कि भूमि सर्वेक्षण का उद्देश्य जमीन के कागजात को ठीक करना है। इसके तहत किसी की जमीन नहीं ली जाएगी। श्री सिंह ने कहा कि सर्वे को लेकर लोगों के बीच कुछ भ्रांतियां हैं। उन्होंने कहा कि स्वघोषणा पत्र कागज पर हस्तलिखित दिया जा सकता है, इसके लिए तत्काल कोई दस्तावेज लगाने की जरूरत नहीं है। राज्य या देश के बाहर रहने वाले लोग स्वघोषणा पत्र ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। पटना उच्च न्यायालय ने महादलित विकास मिशन से अनुसूचित जनजाति को महादलित श्रेणी से बाहर रखने पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति डॉक्टर अंशुमान ने इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति की तुलना में अनुसूचित जनजाति समुदाय अधिक गरीब है। न्यायालय ने मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी सदस्यता अभियान के अंतर्गत मात्र 8 दिनों में 2 करोड़ से अधिक नए सदस्य पार्टी से जुड़े हैं। इस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर को सबसे पहला सदस्य बनकर किया था। पार्टी महासचिव विनोद तावड़े ने बताया कि अभियान के सिलसिले में बिहार समेत 9 राज्यों के पदाधिकारियों के साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संगठन महासचिव बीएल संतोष ने अलग अलग समीक्षा की है। इधर प्रदेश भाजपा आज से विशेष राज्यव्यापी सदस्यता अभियान की शुरुआत कर रही है। इसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता 7 दिन तक गांवों में रहकर लोगों को सदस्यता के लिए जागरूक करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कल पार्टी नेताओं को विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया, जो संबंधित जिलों में जाकर सदस्यता अभियान की निगरानी करेंगे। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अनुसार 11 से 27 सितंबर तक 10वीं कक्षा के फॉर्म भरे जाएंगे। परीक्षार्थी 24 सितंबर तक शुल्क जमा कर सकते हैं। वहीं इंटरमीडिएट के लिए फॉर्म 25 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। शुल्क 22 सितंबर तक जमा किया जा सकता है। फॉर्म भरने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Patna पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि चक्रवातीय प्रभाव से 13 और 14 सितंबर को प्रदेश में कई स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक सुनील नारायण थूल ने बताया कि चक्रवात के प्रभाव से गया, नवादा और नालंदा समेत राज्य के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर अच्छी बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर बिहार में इसका प्रभाव नहीं रहेगा। गौरतलब है कि मानसून सीजन के दौरान प्रदेश में अब तक 27% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक लगभग 844 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, लेकिन 717 मिलीमीटर ही बारिश हुई है। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 82 नए मामलों की पुष्टि हुई है। पटना में सबसे अधिक 31 नए मामले मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस वर्ष अब तक डेंगू के 1228 मामले सामने आ चुके हैं। इस बीच पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने कहा है कि डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल NMCH को डेंगू अस्पताल बनाया जाएगा। इधर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के साथ मंकी पॉक्स को लेकर सभी स्तर के अस्पतालों को अलर्ट कर दिया है। देश के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर AK वार्ष्णेय ने कहा है कि डेंगू मरीजों को चिकित्सकों की सलाह पर ही दवाओं का सेवन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि डेंगू मरीजों को पैरासिटामोल के अलावा किसी अन्य दर्द निवारक दवा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
डेंगू में देखिए कोई विशेष उपचार नहीं होता, क्योंकि ये वायरल है, इसके लिए कोई एंटीवायरल मेडिकेशन नहीं बनी है। सामान्यता जो है, हम बुखार उतारने के लिए पैरासिटामोल देते हैं या ठंडे पानी की पट्टियां रखते हैं, क्योंकि इसमें मसल्स में बहुत ज्यादा दर्द होता है। और इनफैक्ट अगर इस बुखार को हम बोलते हैं तो कमर तोड़ बुखार भी बोलते हैं या हड्डी तोड़ बुखार भी बोलते हैं। तो ऐसे में चूंकि पैरासिटामोल से उनको बुखार नहीं उतर पाता तेजी से या दर्द में उतनी कमी नहीं हो पाती, तो बहुत से लोग जो दर्द निवारक दवाइयां हैं, एस्पिरिन की गोलियां या जो एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन होती हैं, जिसको हम डाइक्लोफेनेक सोडियम या इबुप्रोफेन या निमोसलाइड इस तरीके के नाम से जानते हैं, वो लेना शुरू कर देते हैं, परंतु उनको नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये सारी दवाइयां हमारे प्लेटलेट्स को गिरा सकती हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी बढ़ा सकती है। तो भूल बस ये दवाइयां ना लें।
केंद्र सरकार ने कहा है कि साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल होने के कारण 1 करोड़ से अधिक मोबाइल कनेक्शन बंद कर दिए गए हैं। लगभग 2,27,000 मोबाइल हैंडसेट भी ब्लॉक किए गए हैं। दूरसंचार विभाग ने कहा है कि इन कनेक्शनों की पहचान संचार साथी पहल से की गई थी। पिछले एक पखवाड़े में 3,50,000 से अधिक स्पैम नंबरों को भी बंद कर दिया गया है। 50 संस्थाओं को काली सूची में डाला गया है। बिहार की माही श्वेत राज ने 77वीं सीनियर राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मैंगलोर में खेले गए महिलाओं की 50 मीटर बटरफ्लाई स्पर्धा में माही ने 28.33 सेकंड का समय निकाल पहला स्थान प्राप्त किया। इधर गया में खेले गए ईस्ट जोन बैडमिंटन चैंपियनशिप में बिहार की महिला टीम ने कांस्य पदक जीता है। वहीं मुंगेर के पराग सिंह और भोजपुर की भावना सिंह ने व्यक्तिगत मुकाबलों में तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष पूरे होने पर शेखपुरा जिले में 2 अक्टूबर तक स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता की थीम पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दरभंगा जिले के मनीगाछी में पुलिस गश्ती वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने से वाहन चालक सिपाही रविकांत कुमार की मौत हो गई। रोहतास जिले के सासाराम रेलवे स्टेशन के पास से पुलिस ने बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गोपालगंज में भू माफियाओं द्वारा राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन की जमाबंदी व्यक्ति विशेष के नाम से करवाने का मामला सामने आया है। जिला प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य मंत्रिमंडल के फैसलों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है। हिन्दुस्तान ने कैबिनेट के निर्णय का शीर्षक लगाया है, राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना फिर शुरू होगी। दैनिक जागरण ने लिखा है, राज्य में सहकारी बैंक से ग्राहक दिसंबर से ले सकेंगे गोल्ड लोन। दैनिक भास्कर ने केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्णय को प्रमुखता देते हुए लिखा है, जीपीएस से टोल वसूली, 20 किलोमीटर फ्री, फिर जितनी यात्रा उतना टोल। प्रभात खबर की सुर्खी है, सेविका को मोबाइल रिचार्ज के लिए अब मिलेंगे 3,000 रूपये। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, मणिपुर में फिर बिगड़े हालात, इम्फाल में जबरदस्त प्रदर्शन। आज अखबार लिखता है, तेजस्वी को दुबई जाने के लिए सशर्त अनुमति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन करेंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में 7,559 पदों के सृजन को मंजूरी दी। उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6,000 से अधिक विद्यालय सहायकों की होगी नियुक्ति। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया आज से शुरू। और मौसम विभाग ने कहा, चक्रवाती प्रभाव से 13 और 14 सितंबर को प्रदेश के दक्षिणी भागों में अच्छी बारिश की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।